भगवान बुद्ध के श्रद्धालु सज्जनों, सन्नारियों, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आओ भगवान बुद्ध के बारे में समझें, उनकी शिक्षा के बारे में समझें। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले 1.5-2 हज़ार वर्षों से न केवल भगवान बुद्ध की वाणी हमारे यहाँ से लुप्त हो गई, बल्कि उनकी प्रमुख शिक्षा विपश्यना भी लुप्त हो गई। लेकिन सौभाग्य की बात है कि अब ये दोनों भारत में लौट कर आए हैं। सौभाग्य की बात हुई कि सम्राट अशोक ने और उसके गुरु भदंत मौग्गल्यपुत्र तिस्स ने, ये दोनों भगवान की वाणी भी और उनकी प्रैक्टिकल शिक्षा भी भारत के बाहर अनेक देशों को भेजी। और भारत का सौभाग्य समझें कि उनकी वाणी इन पड़ोसी देशों में इतने वर्षों तक शुद्ध रूप में कायम रखी गई और उनकी ये विद्या, प्रैक्टिकल विद्या विपश्यना, ये भी अपने पड़ोसी देश में म्यांमार में गुरु शिष्य परंपरा द्वारा शुद्ध रूप में कायम रही। उन्होंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ा नहीं, अपनी ओर से कुछ निकाला नहीं। तो हमें सौभाग्य से जैसे भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, वही अपने शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हुई। जब तक इन दोनों को साथ जोड़कर न देखा जाए, थ्योरी और प्रैक्टिस, भगवान की शिक्षा के दो एस्पेक्ट, थ्योरी और प्रैक्टिस, जिसे उन दिनों की भाषा में कहा गया पर्यत्ति और पटिपत्ति, इन दोनों को साथ जोड़ के न देखा जाए तो भगवान की शिक्षा पूरी तरह समझ में नहीं आती। प्रैक्टिकल अभ्यास करने पर ही एक एक शब्द के सही सही अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं, अन्यथा बहुत भ्रांतियां फैलती है। अपने यहाँ भारत में तो न जाने कितनी भ्रांतियां बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में फैली। जो बुद्धानुयायी देश हैं वहाँ भी, जहाँ उनकी शिक्षा का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट खो गया, वहाँ बुद्धवाणी को, बुद्ध की शिक्षा को सही तरह से नहीं समझ पाए। अब उन देशों में भी फिर से विपश्यना की जागृति हो रही है और वो इस बात को ठीक से समझ रहे हैं कि वस्तुतः भारत में भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो सही माने में क्या थी, कैसे थी। जब इन दोनों क्षेत्रों का अनुभूति द्वारा अध्ययन करते हैं तो एक बात उभर कर आती है कि उस महापुरुष ने कोई संप्रदाय स्थापित नहीं किया। उस महापुरुष की वाणी में दो बातें बहुत अच्छी तरह से उभर कर आती हैं। एक तो ये कि धर्म का ह्रास नहीं होना चाहिए। धर्म का ह्रास कैसे होता है? जब लोग धर्म का सही अर्थ भूल जाते हैं तो उसका ह्रास होना शुरू होता है। एक बड़ा कारण ह्रास का ये होता है कि धर्म का डिवैल्यूएशन होना शुरू हो जाता है, अवमूल्यन होता है। धर्म धारण करने के लिए होता है, धारण करें नहीं और केवल उसके चर्चा करें। चर्चा करें अच्छी बात है, चर्चा करने में दोष नहीं है, चिंतन मनन करने में दोष नहीं है, लेकिन वहीं गाड़ी रुक जाए तो खो दिया हमने धर्म को। उसी अनुभूति पर उतारे, लाभ तब होता है जबकि धर्म अनुभूति पर उतरता है। अनुभूति पर उतरना छूट जाए तो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा बड़ी अच्छी बात, उनकी वाणी के प्रति भी श्रद्धा बड़ी अच्छी बात, उनकी वाणी को लेकर के बुद्धि विलास कर लें, वाणी विलास कर लें, अपने मन को संतुष्ट कर लें। हमारे देश में एक ऐसा महापुरुष हुआ जिसने ऐसी शिक्षा दी, लाभ नहीं हुआ। धारण करे, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। धारण करे धर्म को, नहीं किया तो धर्म का अवमूल्यन होना शुरू हो गया, धर्म के नाम पर धोखे चलने लगे। एक बड़ा अमूल्यन इस बात को लेकर होता है कि कोई आदमी धर्म धारण करे या न करे, फिर भी अमुक माँ के पेट से जन्मा है इसलिए वो महान है, पूज्य है। कोई व्यक्ति चाहे जितना धर्म धारण करे, सारा जीवन उसका धर्म में बीते, लेकिन क्योंकि अमुक माँ के पेट से जन्मा है इसलिए नीचा है, धर्म का अपमान हो गया। धर्म के मुकाबले किसी माँ का पेट ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कितना ही धर्म धारण कर ले फिर भी किस माँ के पेट से निकला है, कितना ही धर्म न धारण करे फिर भी किस माँ के पेट से निकला है। जब ऐसी अवस्था समाज में आती है तो धर्म की ग्लानी होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म की कोई कीमत नहीं रह गई, माँ के पेट की कीमत हो गई। तो बुद्ध जैसा व्यक्ति धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए लोगों को धर्म सिखाता है। तूने धर्म धारण किया, जितना जितना धर्म धारण किया उतना उतना पूज्य है, उतना उतना महान है। तूने नहीं धारण किया तो उतना उतना गया गुजरा है, उतना उतना नीचा है। और एक व्यक्ति कितना ही नीचा क्यों न हो, वो प्रयत्न करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके एकदम ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकता है। उसके लिए रास्ता खुला है, कोई प्रतिबंध नहीं। एक व्यक्ति धर्म धारण करने वाला बहुत ऊंची अवस्था पर है, अपने ना समझे से जीवन में धर्म जो धारण किया था उसे भूलने लगा, उसे छोड़ने लगा, तो वही व्यक्ति बहुत नीचा हो सकता है। तो नीचा और ऊंचे का मापदंड धर्म धारण करने पर है, किया या नहीं किया, कम किया या ज्यादा किया, तो धर्म की स्थापना हुई। और एक बात उनकी वाणी से बहुत स्पष्ट मालूम होती है कि जहां धर्म के नाम पर संप्रदाय खड़े हो जाए, उन दिनों की भाषा में संप्रदाय को तीर्थ कहते थे, तो जो संप्रदाय व्यक्ति है, संप्रदायवादी व्यक्ति है, उसे तैर्थिक कहते थे। तो भगवान बड़ी करुणा से कहते हैं, अरे बेचारा तैर्थिक है रे, ये धर्म कहाँ समझेगा, उनकी गोचर भूमि नहीं। जो संप्रदायवादी हैं, धर्म उनका क्षेत्र नहीं, उनकी गोचर भूमि नहीं, वो धर्म को समझेंगे नहीं। उनके लिए तो अपने सांप्रदायिक मान्यता, उनके लिए अपने सांप्रदायिक कर्मकांड, उनके लिए अपने सांप्रदायिक तीज त्यौहार, पर्व उत्सव, यही प्रमुख हैं। धर्म धारण करना सीखेंगे भी नहीं। तो इन दो बातों के लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बार बार कहा कि जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता, जन्म से कोई नीचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा होता है, कर्म से नीचा होता है। और धर्म कहीं सांप्रदायिक बाड़े में न बंध जाए, धर्म सबका होता है। 15,000 पृष्ठों का उनकी वाणी का अपना साहित्य और लगभग 30-35,000 पृष्ठों की टीकाएं, अनुटीकाएं, इतने विशाल साहित्य में कहीं बौद्ध शब्द नहीं, आश्चर्य हुआ, बौद्ध शब्द ही नहीं है। वो अपनी शिक्षा को कभी बौद्ध धर्म नहीं कहते, और जो उनकी शिक्षा का अनुगमन करते हैं, उनकी शिक्षा के रास्ते चलते हैं, उनको बौद्ध नहीं कहते, सारे साहित्य में। और बुद्ध के 500 बरस के बाद तक, अब तक हमारे यहाँ जो अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ, तो 500 बरस तक हमने देखा कहीं बौद्ध शब्द नहीं। न तो उनकी शिक्षा को बौद्ध धर्म कहा गया, न उनके अनुयायियों को बौद्ध कहा गया, उनकी शिक्षा को धर्म कहा गया, और उनकी शिक्षा के पालन करने वालों को धम्मिको, धम्मचारी, धम्म विहारी, धार्मिक कहा गया। धर्म और धार्मिक, धर्म और धार्मिक, बस यही शब्द है, बौद्ध धर्म और बौद्ध नहीं है। क्यों नहीं है समझना चाहिए कि जैसे ही कहेंगे बौद्ध धर्म तो केवल बौद्धों का होके रह गया, जैसे हिंदू धर्म हिंदुओं का होके रह गया, जैन धर्म जैनियों का होके रह गया, इस्लाम धर्म मुसलमानों का होके रह गया, क्रिश्चियन धर्म क्रिश्चियंस का होके रह गया। धर्म तो सबका है, उसके साथ ही विशेषण लगे कि उसका अवमूल्यन होना शुरू हो गया। बार बार कहा अपमानो धम्मो, धर्म असीम है, अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, और उसे हम ससीम बना दें, छोटा बना दें, केवल इन लोगों के लिए धर्म है, तो धर्म समझे नहीं। धर्म सबके लिए है, और कोई व्यक्ति बुद्ध होता है तो सबके लिए धर्म सिखाता है, और इसी कारण से बुद्ध की शिक्षा भारत के बाहर गई, तो जहाँ गई वहाँ लोगों ने स्वीकार किया, जहाँ गई वहीं लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि वो धर्म सिखाता है। धर्म लॉ ऑफ नेचर, नेचर ऑफ द यूनिवर्सल लॉ, उसको धर्म कहा। बार 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 इस शब्द का प्रयोग करते हैं, धर्म नियामता, धर्म के जो नियम है, धर्म नियामता। अपने यहाँ भारत से ये शब्द लुप्त हो गए, धर्म नियामता। और कहते हैं कोई बुद्ध हो या न हो, धर्म नियामता कायम रहती है, लॉ ऑफ नेचर कायम रहता है। बुद्ध उसे खोज निकालता है, अपना लाभ करता है और बांटता है लोगों को, तो लोक कल्याण होता है। लॉ तो है ही अपनी जगह, कोई न्यूटन हो या न हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो है ही, उसने ढूंढ निकाली, हमने उसका लाभ लिया। कोई गलीलियो हो या न हो, कोई आर्यभट्ट हो या न हो, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, तो लगाती ही है, किसी ने ढूंढ निकाला, हमने स्वीकार किया, बुद्धि के स्तर पर उसका लाभ लिया। ठीक इसी प्रकार धर्म नियामता तो है ही, वो रहेगी, सदा रहेगी। करोड़ों वर्ष पहले भी वही धर्म नियामता थी, आज भी वही है और करोड़ों वर्ष बाद भी रहेगी। धर्म का मतलब होता था स्वभाव, अत्तनो स्वभाव धारेति इति धम्मो, अपना स्वभाव धारण करे उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग होता था। वत्थु स्वभावो धम्मो, सजीव या निर्जीव जो भी वस्तु है उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव को धर्म कहते थे। बात ही चले गए, सारे भारत ने विद्या खो दी, उनकी वाणी खो दी, तो बात ही पलट गई। स्वभाव क्या है, जैसे पुराने समय में इस शब्द का प्रयोग होता था, जिस अर्थ में प्रयोग होता था, अब कभी कभी उसकी दूर की कोई गूंज सुनाई दे जाती है। जब हम कहते हैं अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, क्या धर्म हुआ? बौद्ध धर्म है कि हिंदू धर्म है कि जैन धर्म है कि ईसाई धर्म है? धर्म है, उसका स्वभाव है, वो स्वयं जलेगी और जो उसके लपेट में आ जाए उसे जलाएगी। अगर वो जलती नहीं और कोई उसके लपेट में आए उसे जलाती नहीं, तो और कुछ होगी, अग्नि नहीं हो सकती। अग्नि है तो उसका स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, जलेगी जलाएगी। ऐसे ही कहें बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना, स्वभाव है उसका, अपने आप भी शीतल रहेगी और जो उसके संपर्क में आएगा उसको शीतल करेगी। ये धर्म नियामता, धर्म स्थिति, ये शब्द इस्तेमाल किए। धर्म धर्मता, ये धर्म की धर्मता है, धर्म का स्वभाव है। ये खोज करके कहाँ पहुंचे, हमारा चित्त क्या धारण करता है, उसके लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया। चित्त जो कुछ धारण करे वो धर्म, अच्छा बुरा जो भी धारण करे। तो पहले पहल जब ऐसे शब्द सामने आए तो बड़ा अजीब सा लगा, पुण्य धर्म पाप धर्म, कुशल धर्म अकुशल धर्म, शुक्ल धर्म कृष्ण धर्म, क्या बात हुई? पुण्य धर्म तो समझ में आता है, ये पाप धर्म क्या हुआ? कुशल धर्म तो समझ में आता है, ये अकुशल धर्म क्या हुआ? उन दिनों की भाषा, जो धारण किया चित्त ने, जो धारण किया पुण्य धारण किया माने पवित्रता धारण की, पुनीत हो सो पुण्य, पवित्रता धारण की, कि उसने पाप धारण किया, मैल धारण किया, कुशल धारण किया कि अकुशल धारण किया, जैसी चित्त वृत्ति धारण की चित्त ने, उसको धर्म कहा। और आगे बढ़े, एक वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं, सारी शब्दावली वैज्ञानिकों की शब्दावली है, कोई रिलीजन की स्थापना नहीं की इस महापुरुष ने, उसके नाम पर लोगों ने रिलीजन स्थापना कर ली, वो लोग जाने। इस महापुरुष ने कोई रिलीजन स्थापित नहीं किया। साइंटिस्ट है, महान वैज्ञानिक है, खोज करता है, अनुसंधान करता है, और ऐसा अनुसंधान करता है जो अपने लिए भी कल्याणकारी है, औरों के लिए भी कल्याणकारी है। अनुसंधान में न जाने कितनी बातें सामने आती हैं, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है, न हमारे दुखों से उनका कोई संबंध है और न दुखों के बाहर निकलने के किसी रास्ते से कोई संबंध है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, क्या करें उनका। तो जो जो काम की बात थी उसका अनुसंधान करके लोगों के सामने रखा, तो अनुसंधान में ये बात आई, चित्त जो धारण करता है उसका क्या स्वभाव है। चित्त ने क्रोध धारण किया, द्वेष धारण किया, दुर्भावना धारण की, तो क्या हुआ, उसका क्या स्वभाव। उसका स्वभाव है जलना और जलाना, उसका स्वभाव है व्याकुल होना और व्याकुल करना। कोई व्यक्ति अपने भीतर द्वेष, दुर्भावना, क्रोध, कोप जगा के तो देखे, व्याकुल हो जाएगा। उसका स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना, और जो उसके संपर्क में आएगा उसे व्याकुल बना देगा, उसका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार जब चित्त मैत्री धारण करता है, करुणा धारण करता है, सद्भावना धारण करता है, तो क्या स्वभाव है उस धर्म का, क्या धर्म है उसका, क्या स्वभाव है। बहुत शीतलता, बहुत शांति धर्म है उसका। जैसे ही भीतर मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, बहुत शीतलता मालूम हो रही है, बहुत शांति मालूम हो रही है, उसका स्वभाव है। और जिस समय किसी के मन में मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, और उसके वजह से शांति जागी, शीतलता जागी, तो उस समय जो उसके संपर्क में आएगा उसे भी शांति महसूस होगी, शीतलता महसूस होगी, क्योंकि ये शांति और शीतलता की तरंगे वातावरण में फैलने लगी, तो उस वातावरण के संपर्क में जो आएगा उसे शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। जैसे बर्फ के संपर्क में जो आएगा शीतलता मिलेगी, अग्नि के संपर्क में जो आएगा व्याकुल होगा, जलेगी, जलाएगा। ये सारी खोज इसलिए की कि स्वभाव क्या है, उस स्वभाव को समझो और अपने आप को बदलो। दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं है, कितना ही ना समझ क्यों ना हो, एक आदमी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मैं दुख का जीवन जीऊं, एक आदमी नहीं मिलेगा। हर आदमी चाहता है मैं सुख का जीवन जीऊं, मैं शांति का जीवन जीऊं, लेकिन होश नहीं है, होश नहीं है, चाहता है सुख का जीवन जीऊं और जीता है दुख का जीवन, चाहता है शांति का जीवन जीऊं और अशांति का जीवन जीता है। बेचैनियां ही बेचैनियां, व्याकुलता ही व्याकुलता, ऐसा क्यों होता है। खोज की उस व्यक्ति ने, एक वैज्ञानिक की तरह खोज की, उसे कोई संप्रदाय नहीं खड़ा करना था, उसे लोगों को फॉलोअर बना करके जय जयकार नहीं सुननी थी, लोगों का कल्याण करना था, तो एज ए साइंटिस्ट ढूंढता है क्यों होता है। हम दुखी होते हैं तो कारण बाहर देखते हैं, ये अनचाही बात हो गई इसलिए मैं दुखी हो गया, ये मन चाही बात नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हो गया, तो मेरे दुख का कारण बाहर है। कोई अनचाही बात नहीं हो, कोई अनचाही बात कहे नहीं मुझे, सब मन चाही बातें कहे और मन चाही बातें हो तो मैं सुखी रहूँगा। भगवान कहते हैं नहीं रे, तू बाहर की किसी भी बात को लेकर के न दुखी होता है न सुखी होता है, दुख और सुख तेरे भीतर है, घटना बाहर घटी, दुख और सुख तेरे भीतर जागा। कैसे जागा, एनालिटिकल स्टडी करके, सच्चाई के टुकड़े टुकड़े करके, डिवाइडिंग, डाइसेक्टिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, डिसॉल्विंग, टुकड़े 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 करके एक वैज्ञानिक की तरह देखता है, क्या है ये रहस्य, क्या है, हम क्यों व्याकुल होते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं। बुद्धि विलास नहीं कर रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल गेम नहीं खेल रहा है, एक्चुअल एक्सपीरियंस से जान रहा है किन गहराइयों में उतरा ये व्यक्ति। उनकी वाणी देखते हैं और विपश्यना करते हैं तो बड़ा अजीब मालूम होता है कि भारत का ही नहीं, सारे विश्व का महान साइंटिस्ट, इसके टक्कर का कोई साइंटिस्ट हुआ नहीं। ऐसे समय में आज तो एक साइंटिस्ट किसी बात की स्टडी करता है, विश्लेषण करता है, तो उसके पास बहुत से अपरेटस हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैब है, सारी लैब 3.5 हाथ की काया में, और सारा इंस्ट्रूमेंट अपने आप का, अपना मन, उसके जरिए टुकड़े कर करके टुकड़े कर करके देखता है, सारे शरीर प्रपंच के टुकड़े कर करके देखता है क्या है, सारे चित्त प्रपंच के टुकड़े कर करके देखता है क्या है, चित्त वृत्तियों के टुकड़े कर करके देखता है क्या है। उसे खोज करनी है, अनुसंधान करनी है। कोई परंपरा से ये बात मानी आ रही है और कोई संप्रदायवादी होगा तो हमारे संप्रदाय में ये मान्यता है, तो सारा जीवन इस बात में लगा देगा कि हमारी जो मान्यता है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी वकालत करेगा और तरह तरह की बातें ढूंढ करके, देखो ठीक है ना, हमारे महापुरुषों जो कहा वो ठीक है ना, हमारी परंपरा जो कहती है बिल्कुल ठीक है ना। बुद्ध को ये नहीं करना था। सच्चाई क्या है? और सच्चाई वो जो केवल सुनी सुनाई नहीं हो, जो केवल पढ़ी पढ़ाई न हो, जो केवल चिंतन मनन द्वारा प्राप्त न हो, सच्चाई वो जो अनुभूति से प्राप्त हुई। मुझे जो अनुभूति हुई मेरे लिए वो सच्चाई है, किसी अन्य को अनुभूति हुई उसके लिए वो सच्चाई है। बुद्ध को अनुभूति हुई वो बुद्ध की सच्चाई है, मेरी नहीं। लेकिन सच्चाई को अनुभव पर उतारने का रास्ता बुद्ध ने बता दिया तो वही सच्चाई। चाहे जो व्यक्ति प्रयत्न करे, परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे, वही अनुभूति हो। लॉ ऑफ नेचर है, धर्म नियामता है, वो तो एक ही है। धर्म नियामता अलग अलग समाज के लिए, अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग नहीं हुआ करती। अग्नि का धर्म जलना है तो सबके लिए वो जलने का ही काम करेगी। कोई हाथ रखेगा तो अग्नि ये नहीं देखेगी कि यह हाथ रखने वाला अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ईसाई कहता है कि मुस्लिम कहता है। हाथ रखा है जलेगा ही। बर्फ पर हाथ रखेगा तो बर्फ ये नहीं देखेगी कि व्यक्ति किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस गोत्र का है, कुछ नहीं देखेगी, शीतल करेगी। लॉ ऑफ नेचर सबके लिए एक जैसा है। हम अपने भीतर क्रोध जगाएंगे, द्वेष जगाएंगे तो लॉ ऑफ नेचर इस बात को नहीं देखेगा कि ये क्रोध जगाने वाला व्यक्ति हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है कि ईसाई है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। क्रोध जगाया है ना, उस क्रोध को कोई लेबल नहीं लगा सकता। ये हिंदू क्रोध जगाया कि ये मुस्लिम क्रोध जगाया कि बौद्ध क्रोध जगाया। अरे क्रोध क्रोध है भाई, अग्नि अग्नि है, और उससे जो पीड़ा हुई, उससे जो जलन हुई, उसको भी लेबल नहीं लगा सकते। ये जो पीड़ा हुई, हिंदू पीड़ा हुई कि बौद्ध पीड़ा हुई कि जैन पीड़ा हुई कि मुस्लिम पीड़ा हुई, पीड़ा है, उसका स्वभाव है। ये सारी खोज उस व्यक्ति ने की, तो इसीलिए धम्म को धम्म अपमानो, धम्म अपरमित है, सीमा में मत बांधो। धर्म को किसी सीमा में बांध दिया तो उसका अवमूल्यन हो गया, डिवेल्यूएशन हो गई उसकी। जो अपमान है सब पर लागू होता है, उसके थोड़े से लोगों पर क्यों? तो समझे नहीं इसलिए ऐसा करने लगे। समझेंगे तो कैसे करेंगे? तो जो जिस तरह से उसने एक साइंटिस्ट की तरह खोज करनी शुरू की, वैसे खोज करने लोगों को सिखाई, ऐसे तुम भी कर सकते हो। मनुष्य है, हर मनुष्य कर सकता है। और बहुत सरल तरीका, सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि प्रतिक्षण इस 3.5 हाथ की काया के भीतर प्रतिक्षण तुम्हें जो सच्चाई अनुभूति पर उतरी, बस उतना ही, उसके पीछे उसके आगे की बात नहीं, कोई कल्पना की बात नहीं, जो अनुभूति पर उतरा बस वही सत्य है। अगले क्षण जो अनुभूति पर उतरा वो सत्य है, अगले क्षण जो अनुभूति पर उतरा, यूं कदम कदम एक एक क्षण सच्चाई के साथ बढ़ते 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 आरंभ होगा बड़ी स्थूल स्थूल सच्चाइयों से, बड़ी ग्रॉस रियलिटी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सटलर सटलर सटलर। उनके शब्द हैं ओलारिको, बहुत ग्रॉस है ओलारिको, फिर सुखुमा सुखुमा, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, उस अवस्था पर पहुंच जाएगा जहां परम सत्य है, उससे अधिक सूक्ष्म कुछ नहीं, जो शरीर और चित्त के क्षेत्र के बाहर चला गया। शरीर और चित्त के क्षेत्र तक अनुभूति है, स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, उसके परे इंद्रियातीत अनुभूति है। शरीर और चित्त की सारी अनुभूतियों को देख रहा है, उदय होता है व्यय होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, अनित्य है अनुभव कर रहा है, कोई फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी को बहुत खराब बताया बुद्ध ने। जब लोगों ने पूछा आपकी क्या फिलॉसफी है, आपका क्या दर्शन है, अरे भाई मैं दर्शन से ऊंचा उठ गया रे, तुम भी उठो, दार्शनिक मान्यताओं से ऊपर उठो तो सच्चाई समझ में आएगी, अन्यथा बांध के रह जाएगी। जो तुम्हारी मान्यता है परंपरागत मान्यता, उसे बंधे रह जाओगे, सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। दर्शन शब्द का सही अर्थ दिया हमें, जानते ही नहीं थे। दर्शन का एक अर्थ तो होता है आँख खोल करके रंग देखें, रूप देखें, आकृति देखें, दर्शन हुआ, नहीं गलत है। दर्शन का एक अर्थ कर लिया धीरे धीरे फिलॉसफी, ये अमुक दर्शन है, ये अमुक दर्शन है, ये इस संप्रदाय का दर्शन है, ये उस संप्रदाय का दर्शन है, बिल्कुल नहीं, धोखे की बात। दर्शन का मतलब अनुभूति, विपश्यना का मतलब अनुभूति, पश्यति दुनियादारी का अर्थ हुआ पश्यति का देखना। बुद्ध जब विपश्यना सिखाते हैं तो देखना नहीं, क्या देखेगा? पुराने जमाने का, बुद्ध के समय इस शब्द का जो अर्थ दिया गया वो अर्थ अभी भी कभी कभी सामने आता है हमारे। जैसे कहते हैं अग्नि का धर्म जलना, कब कब का अर्थ आज भी आता है सामने। ऐसे ही देखने का अर्थ, अनुभव करना, ये आता है कभी कभी सामने। जब कोई कहता है ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, अरे तो चक्कर तो देख। चक्कर क्या देखे? चक्कर उसका रूप देखे, उसका रंग देखे, क्या देखे? ये संगीत बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है, अरे तो सुनकर तो देख। सुनकर क्या देखे? क्या देखे? उसका रूप देखे, उसका रंग देखे, उसकी आकृति देखे, क्या देखे? ये मखमल बहुत मुलायम है, तू जरा छूकर तो देख, क्या देखे? अनुभव करके देख। ये जो मिठाई है उसे जीभ परख के अनुभव करके देख कितनी मीठी है। ये जो संगीत है उसे सुन करके अनुभव करके, अनुभव करके जान। अनुभव करके जानने का नाम देखना हुआ करता था, बिगड़ गया। हमारे यहाँ भारत में बिगड़ गया ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ जितने बुद्धानुयायी देश है वो सब उल्टा अर्थ करने लगे। बुद्ध की वाणी कुछ कहती है और ये कुछ और ही समझे जा रहे हैं, और ही कहे जा रहे हैं। अनुभव करने के बाद उस व्यक्ति ने अनुभव करना सिखाया। बहुत चर्चा प्रज्ञा की, क्या प्रज्ञा? एक तो प्रकृष्ट ज्ञान, बहुत उत्कृष्ट ज्ञान, वो प्रज्ञा। बुद्ध कहते हैं नहीं, जो ज्ञान तेरे भीतर तेरी अनुभूति से जागा, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो प्रज्ञा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, किसी दूसरे का ज्ञान है, हमने तो केवल सुना है और मान लिया, श्रद्धा से मान लिया, या बहुत हुआ तो उसे इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया, बुद्धि से मान लिया, तर्कों से मान लिया, मान रहे हैं, जाना नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्ध केवल मानने की बात पर नहीं विश्वास करते हैं, जानने की बात पर, अनुभूति पर उतारो, सत्य को अनुभूति पर उतारो तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। मेरा अपना ज्ञान है, मेरी अनुभूति पर उतरा है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। ये प्रज्ञा हुआ करती थी, अब क्या हो गया? बुद्धानुयायी देशों में भी क्या हो गया? किसको प्रज्ञा कहते हैं? अब विपश्यना करने लगे लोग वहां पर, तो समझ में आने लगा कि बुद्ध ने क्या सिखाया, अन्यथा बुद्ध की शिक्षा भूल गए। क्या सिखाया? अनुभूति से जानो क्या सिखाया। कहता है कि ये क्यों हमको दुख होता है, तो अपने भीतर आत्मदर्शन करता है। ये शब्द का भी अर्थ बदल गया। आत्मदर्शन माने किसी आत्मा का दर्शन करता है। तो कोई आत्मा का दर्शन ऐसे करता है कि जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। कोई आत्मा का दर्शन करता है कि अंगुष्ठ प्रमाण अंगूठे की जितनी बड़ी आत्मा। कोई आत्मा का दर्शन करता है कि वो तिल के समान आत्मा। कोई करता है कि बाल के नोक के समान आत्मा। अरे रूप और आकृति की बात नहीं है, स्वयं दर्शन करो, स्वयं अनुभूति, अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अनुभूति पर उतारो। ये भी विपश्यना होती थी, अनुभूति द्वारा सच्चाई को समझो। नहीं समझ रहे हो? कभी अनुभूति द्वारा अपने भीतर क्या हो रहा है जाना ही नहीं, तो उसे कहा अविद्या है। विद्या जगाओ। विद्या का अर्थ भी कहां से कहां पहुंच गया। जो वेदनाओं के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है उसे विद्या कहते थे। वेदन होता है। आज तो वेदना शब्द का अर्थ पीड़ा हो गया। बहुत वेदना है तो बहुत पीड़ा है। 2500 वर्ष की भारत की भाषा में यह अर्थ नहीं था। वेदना सुखद भी, वेदना दुखद भी, वेदना असुखद अदुखद न्यूट्रल भी। वेदना का अर्थ वेदन होना, अनुभव होना। मुझे अपने अनुभव का ज्ञान हो रहा है तो विद्या है, और अनुभव का ज्ञान नहीं है तो अविद्या है, और अविद्या है तो केवल बुद्धि विलास है। या तो अंधश्रद्धा है या बुद्धि विलास है, अनुभूति पर सच्चाई नहीं उतरी। तो जब खोज शुरू की कि दुख कैसे जागता है, कहाँ जागता है और कैसे उसे निकाला जा सकता है, तो पहली बात यही समझ में आई, अविद्या अविद्या अविद्या। अरे यही नहीं मालूम कि मेरे 3.5 हाथ की काया में क्या हो रहा है? कुछ नहीं मालूम भीतर भीतर क्या हो रहा है। जब से जन्मे आँख खुली तो बहिर्मुखी 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 रहे, बाहर की दुनिया हमारे लिए प्रमुख रही, कभी अपने भीतर की सच्चाई देखी नहीं। कभी आंख बंद करके बैठे भी भीतर की सच्चाई देखने को, तो सच्चाई नहीं देखी, कोई कल्पना, कोई मान्यता, कोई फिलोसॉफिकल बिलीफ। हमारी परंपरा का ये फिलोसॉफिकल बिलीफ, हमारी परंपरा की ये मान्यता, बस करो उसकी कल्पना, सच्चाई कहाँ? और ये वैज्ञानिक है, कल्पनाओं को जगह नहीं, अपनी अनुभूतियों से जानो क्या हो रहा है। सच्चाई को अनुभूतियों से जानो तो अविद्या की जगह विद्या आई। विद्या आई तो होश आया, दुख कैसे जागता है? तो तणहा पच्छया, तृष्णा से जागता है। अब तृष्णा का अर्थ एक ही रह गया, आसक्ति आसक्ति आसक्ति। पुराने भारत में ऐसा नहीं, तृष्णा में राग और द्वेष दोनों समा गए। प्रिय को प्राप्त करने की तृष्णा, अप्रिय को दूर करने की तृष्णा, दोनों ही तृष्णा है। राग हो द्वेष हो, राग हो द्वेष हो, होश नहीं है अविद्या है, तो भीतर ही भीतर राग जगाए जा रहे हैं, द्वेष जगाए जा रहे हैं, और जब जब राग जागता है भीतर व्याकुल हो जाता है, भीतर की क्षमता खो दी, बैलेंस खो दिया माइंड का, एकदम व्याकुल हो गया, द्वेष जागा, एकदम व्याकुल हो गया, दुख शुरू हुआ ना, लगता है कि बाहर की घटना की वजह से दुखी हूं मैं। इस वैज्ञानिक ने, इस साइंटिस्ट ने खोज की, बाहर की घटना तुम्हारी इस पांच इंद्रियों में से किसी को आके छुएगी, रूप होगा आंख से छुएगी, शब्द होगा कान को छुएगा, गंध होगी नाक को छुएगा, कोई रस होगा जीभ को छुएगा, कोई स्पर्शव्य पदार्थ होगा शरीर को छुएगा, कोई चिंतन होगा मन को छुएगा। क्या होगा छूने पर? जैसे ही छुआ वैसे ही शरीर में एक संवेदना जागेगी, एक सेंसेशन जागेगा। अपने यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट में केवल सारा का सारा बुद्धवाणी का साहित्य ही नहीं, अपने यहाँ भारत के जितनी आध्यात्मिक परंपरा है, सारे वेद, सारे उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और जैनियों का आगम, ये सारा एक सीडी रोम में इकट्ठा कर लिया, छोटे से सीडी रोम, उसमें इतना विशाल साहित्य, भारत का सारा साहित्य आ गया। अब उसमें रिसर्च की फैसिलिटी है, तो बॉडी सेंसेशन की चर्चा कहीं नहीं है, न बुद्ध के पहले है, न बुद्ध की विपश्यना के समाप्त हो जाने के बाद कहीं नहीं रही। जब तक विपश्यना चलती थी तब बॉडी सेंसेशन, और वो खत्म हुई तो बॉडी का क्या, क्या बॉडी सेंसेशन? बॉडी सेंसेशन को अनुभूति पर नहीं उतारेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हमने राग जगाया कि द्वेष जगाया, किन गहराइयों में गया व्यक्ति, टुकड़े करते 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 माइंड के टुकड़े करता है, टुकड़े करता है, 121 प्रकार का माइंड, आश्चर्य होता है कहां तक पहुंचा, 121 प्रकार का माइंड और 52 प्रकार के चित्त वृत्तियां, मेंटल कॉन्कॉमिटेंट्स, उसके साथ माइंड के साथ उठते हैं 52 प्रकार के, ये चित्त उत्पन्न हुआ इस चित्तवृत्ति के साथ हुआ, ये चित्त उत्पन्न हुआ इस चित्तवृत्ति के साथ उत्पन्न हुआ, और शरीर के टुकड़े कर करके देखता है, अरे इसमें ठोस पना कुछ नहीं, लगता है ये सॉलिडिटी अपेरेंट ट्रुथ है, ट्रुथ तो है, अपेरेंट ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? बुद्धि विलास नहीं कर रहा, दिमागी गेम नहीं खेल रहा, अनुभव कर रहा है, जो कोई भी कर सकता है, बुद्ध ने जो किया वो काम कोई भी कर सकता है, ये खूबी है उसकी। टुकड़े करके देखते 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 इस अवस्था पर पहुंचता है कि सारा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु, इतने सूक्ष्म परमाणु कि उन दिनों की भाषा में कोई शब्द नहीं उसके लिए। तो अपनी ओर से एक शब्द गढ़ा, नया शब्द कोइन किया, उसे कलाप कहा। कलाप माने टाइनियस्ट पार्टिकल ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, कलाप, इतने सूक्ष्म कलाप, सुई के नोक पर लाखों आ जाएं, इतना सूक्ष्म, और सारा शरीर केवल उन कलापों से बना हुआ, कलाप ही कलाप, कलाप ही कलाप, आज की भाषा में कहें तो एटम ही एटम, एटम ही एटम, वो एटम भी सॉलिड नहीं है, कहता है कि वो जो कलाप है वो सॉलिड नहीं है, वो भी वेवलेट, तरंग है, केवल तरंग है। तो सारे शरीर में सिर से पांव तक देखता है, तरंगे ही तरंगे, बाहर दुनिया को अनुभूति से देखता है, अनुभव कर रहा है, बाहर की दुनिया को भी अनुभव कर रहा है, तरंगे ही तरंगे। सबो पज्जलितो लोको, सबो लोको पकंपितो, केवल प्रकंपन। आज के पश्चिम का साइंटिस्ट लगभग 150 वर्ष पहले ही सच्चाई पर पहुंचा कि देर इज नो सॉलिडिटी इन द एंटायर मटीरियल वर्ल्ड, मियर वेवलेट्स। हमारे देश का 2600 वर्ष पुराना एक महापुरुष, सुपर साइंटिस्ट, इसी बात को बिना किसी साइंटिफिक अपरेटस के अपनी अनुभूति से देख कर कहता है, प्रज्वलितो प्रकंपितो, कंबशन एंड वाइब्रेशन, विस्फोट होता है, वाइब्रेशन, विस्फोट होता है, सारे विश्व में यही हो रहा है। इस बात को अनुभूति पर उतारा तो क्या हुआ, सारा रहस्य समझ में आ गया, हम दुखी क्यों होते हैं। माइंड के इतने टुकड़े किए, उनमें चार मोटे मोटे टुकड़े करके देखे। बाहर कोई घटना घटी, किसी ने हमें गाली दी, वो शब्द हमारे कान में लगा, ये वैज्ञानिक है, उसने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया नहीं, क्या हुआ, घटना क्या घटी, उसने गाली दी मेरे कान पर लगी तो तरंग ही तरंग, मेयर वाइब्रेशन, वो गाली भी मेयर वाइब्रेशन। और साधना करते 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 विपश्यना में बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले 10 दिन में इस अवस्था पर पहुंचते हैं, नहीं तो दूसरे 10 दिन में, तीसरे 10 दिन में, या 20 दिन के कोर्स में, या 30 दिन के कोर्स में पहुंचते इस अवस्था पर, सारा शरीर मेयर वाइब्रेशन, मेयर वाइब्रेशन, कान पर मन ले जाके देखते हैं, मेयर वाइब्रेशन, मेयर वाइब्रेशन, ये शब्द आके लगा, ये भी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन टकराई, क्या हुआ, एक नई वाइब्रेशन शुरू हुई, एक न्यूट्रल वाइब्रेशन शुरू हो गई। जैसे कांसे के बर्तन को छेड़े तो सारा कांसे का बर्तन झंझनाने लगा, छेड़ा तो एक जगह लेकिन सारा झंझनाने लगा, शब्द तो केवल कान में आए, सारा शरीर झंझना उठा। ये अनुभव की बात है, कोई फिलोसफी नहीं है, कोई मेयर बिलीफ नहीं है, कोई आदमी अनुभव करके देख सकता है, तरंगे ही तरंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही कोई शब्द कान को आके लगा तो मानस का एक हिस्सा अपना सिर उठाता है, अरे क्या हुआ, ये कान के दरवाजे पर क्या हुआ, अथवा आंख के दरवाजे पर क्या हुआ, नाक के दरवाजे पर, कि जीभ के दरवाजे पर, कि त्वचा के दरवाजे पर, कि मानस के दरवाजे पर क्या हुआ, उसका काम केवल कॉग्नाइज करना, कुछ हुआ, कुछ खटपट हुई। इतने में मन का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाता है, क्या हुआ, अपनी सारी पुरानी अनुभूतियों के बल पर, सारी याददाश्त के बल पर वो देखता है, ये गाली का शब्द आया, गाली तो बहुत बुरी है, कोई हमें गाली निकाल रहा है, बहुत बुरी है, मूल्यांकन करता है उसका। जैसे ही मूल्यांकन हुआ, वो तरंगे जो न्यूट्रल तरंगे थी एकदम बदल गई, दुखद दुखद तरंगे, सारे शरीर में दुखद ही दुखद तरंगे, दुखद ही दुखद तरंगे। कान में शब्द आया, कोई प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो माइंड का ये सेकेंड पार्ट कहता है कि बहुत अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो सारे शरीर में सुखद ही सुखद तरंगे, सुखद ही सुखद तरंगे। तो मानस का तीसरा हिस्सा अब फील करने लगा, दुखद है तो दुखद है फील करने लगा, सुखद है तो सुखद है फील करने लगा। इतने में चौथा हिस्सा अपना सिर उठाता है, दुखद है नहीं चाहिए, सुखद है चाहिए, तो द्वेष जगाता है, राग जगाता है, आसक्ति जगाता है, क्रेविंग और अवर्शन, क्रेविंग और अवर्शन प्रतिक्षण हो रहा है भाई, सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर अवस्था में भीतर ही भीतर तरंगे, और इन पांचों छह इंद्रियों में से कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है, और उसकी वजह से तरंगे बदल रही हैं, सुखद हैं कि दुखद हैं, और हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं राग की या द्वेष की, और व्याकुल हुए जा रहे हैं, बाहर की घटना से व्याकुल नहीं हुए, इन तरंगों को वैल्यूएशन दे करके, अच्छा या बुरा मान करके हमने जो प्रतिक्रिया की, जो रिएक्शन किया, उसकी जगह से व्याकुल हैं। इतनी बड़ी खोज इस आदमी ने की, साइंटिस्ट है, अंधविश्वास नहीं है, हर आदमी को करना सिखाया, देखो तुम्हारे 3.5 हाथ की काया के भीतर किस तरह की तरंगें चल रही हैं। एक दिन में नहीं सीखेगा, 2 दिन में नहीं सीखेगा, 10 दिन में सीखेगा, 20 दिन में सीखेगा, जैसे बताया जाए वैसे काम करता जाए, करता जाए करता जाए, सीखते 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 सारा शरीर कहीं ठोस बने का नामो निशान नहीं, नो सॉलिडिटी एनीवेयर, मेयर वाइब्रेशंस, मेयर वाइब्रेशन इस अवस्था पर पहुंचता है, कल्पना नहीं है, अनुभूति है। और तब रहस्य समझ में आता है, मैं क्यों व्याकुल हुआ, अरे ये संवेदना ऐसी आई मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने द्वेष जगाया, द्वेष जगाते ही व्याकुल हो गया, ये अच्छी लगी और मैंने राग जगाया, यहां इस प्रदेश में राग का अर्थ दूसरा है, मैंने आसक्ति जगाई, व्याकुल हो गया। चाहे राग जगाए चाहे द्वेष जगाए, मन अपना संतुलन खो देता है, अपनी समता खो देता है, अपना बैलेंस खो देता है, व्याकुल हो जाता है। और जैसे फिर बैलेंस हुआ, व्याकुलता दूर हो गई, तो कौन जिम्मेदार है, हर व्यक्ति अपने दुख का स्वयं जिम्मेदार है, अपने सुख का स्वयं जिम्मेदार है। उन गहराइयों तक जाकर देखे तो सही कैसे दुखी हो जाता हूँ, देखे तो सही कैसे सुखी हो जाता हूँ। ये सारी खोज केवल इस बात के लिए कि सारे समाज में सब जगह दुख ही दुख, दुख ही दुख, अनेक कारण हैं। उन कारणों को भी दूर करना चाहिए। ये नहीं कहते कि उनसे आंख बंद कर लो, जहाँ गलत बात हो रही है उसको सुधारो, सब कुछ करो, लेकिन भीतर का भी सुधारो अपने आप को। तो हर परिस्थिति में समता रहेगी, हर परिस्थिति में समता रहेगी, फिर जो करोगे निष्क्रिय नहीं बनाया। एक और बड़ी बात, लोग नहीं समझे तो गलत रूप से लेने लगे कि अब रिएक्शन मत करो, अच्छा है तो क्रेविंग रिएक्शन मत करो, बुरा है तो अवर्शन के रिएक्शन मत करो, एक्शन करो। अब एक्शन लेना है, जहां रिएक्शन होगा प्रतिक्रिया होगी वहां नेगेटिविटी होगी, और जहां एक्शन होगा वहां पॉजिटिविटी होगी। मन समता में है, संतुलन है, जो एक्शन लेनी होगी लेंगे, कड़ी से कड़ी एक्शन भी लेंगे, कठोर से कठोर एक्शन भी लेंगे, उसमें कटुता नहीं होगी। कठोर एक्शन लेने में कोई दोष नहीं, वाणी की कठोरता, शरीर के कर्मों की कठोरता, जहां आवश्यक हो वहां उसका उपयोग करना है, लेकिन कटुता नहीं आ जाए, उसमें कड़वाहट नहीं आ जाए। कटुता जगाते ही तो हम रोगी हो गए, हम व्याकुल हो गए, तो किसी का क्या भला करेंगे, किसी को क्या सुधारेंगे? एक रोगी आदमी दूसरे रोगी आदमी को क्या सुधारेगा? एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को क्या रास्ता दिखाएगा? एक लंगड़ा आदमी दूसरे लंगड़े आदमी को क्या सहारा देगा? अपने आप को पहले सुधारो, स्वस्थ बनो। स्वयं में स्थापित होने को स्वस्थ कहते थे, अपने आप में पहले स्थापित हो। कोई घटना घटी, झट स्वस्थ हुए, भीतर क्या हो रहा है, भीतर इस तरह की संवेदना चल रही है, मैं समता में हूं, मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। अब जो एक्शन लेनी हो लो, बड़ी कल्याणकारी एक्शन होगी, बड़ी प्रभावशाली एक्शन होगी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहले अपने आप को स्वस्थ बनाए। अरे कितनी बड़ी खोज की इस व्यक्ति ने, कैसे आदमी दुखी होता है और क्या कारण है जिससे दुखी होता है, और क्या तरीका है, क्या निवारण है जिससे वो सुखी हो जाए। तो रास्ता बताया, शील का, समाधि का, प्रज्ञा का, कोई फिलोसफी नहीं है, कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है। शील माने सदाचार का जीवन जीना है। क्यों जीना है? उसके पहले भी जो धर्म गुरु थे वो समझाते थे, ठीक ही समझाते थे, मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तुझे समाज में लोगों के साथ रहना है, परिवार में लोगों के साथ रहना है। किसी ने घर बार छोड़कर गृह त्यागी हो गया तो भी तो समाज से संपर्क होता है। तो कोई ऐसा काम मत करो, वाणी से या शरीर से कोई ऐसा काम मत करो जिससे दूसरे लोगों की शांति भंग होती है, सुख भंग होता है, जिससे दूसरे आदमी दुखी होते हैं, ऐसा कोई काम मत करो। तुम चारों ओर अशांति अशांति पैदा कर दोगे, तुम स्वयं शांति में कैसे रहोगे? ये भारत के पुरातन उपदेश चले आ रहे। सामाजिक प्राणी हो, कोई ऐसा काम मत करो कि जिससे दूसरे लोग दुखी हो। बुद्ध भी कहता ठीक है मत करो, कोई तुम्हें मारता है तो तुमको खराब लगता है ना, तो तुम किसी को मारोगे तो उसको भी खराब लगेगा। कोई तुम्हारी वस्तु चुरा लेता है तुमको खराब लगता है ना, तो तुम भी किसी की वस्तु चुराओगे उसको खराब लगेगा। तो अपनी तरह समझ करके किसी दूसरे के प्रति बुरा काम मत करो। ये शिक्षा, बुद्ध एक कदम और आगे जाता है। तुम जब शील का पालन करते हो, माने हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, कड़वी बात नहीं करते, नशा पता नहीं करते, तो ऊपर ऊपर से तो ये लगेगा कि तुम लोगों पर एहसान कर रहे हो, किसी की सुख शांति भंग नहीं करते, अच्छी बात है। लेकिन अंदर जाके देखोगे तो मालूम होगा किसी पर एहसान नहीं कर रहे, तुम अपने आप पर एहसान कर रहे हो, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। भीतर जाने पर समझ में आए ना, केवल सुनने से क्या समझ में आएगा, केवल चिंतन कर लेने से क्या समझ में आएगा, केवल पढ़ लेने से क्या समझ में आएगा, अनुभूति होगी तुम्हारे जानेगा। हत्या करता हूँ तो कैसे हत्या करता हूँ,
क्रोध जगाता हूँ, द्वेष जगाता हूँ, दुर्भावना जगाता हूँ, ताप हत्या करता हूँ।
हंसते खेलते थोड़ी हत्या होती है,
बहुत दुर्भावना जगाएगा। और देखिएगा जैसी दुर्भावना जगाई, अरे व्याकुल हो गया, मैं व्याकुल हो गया। चोरी करेगा, कैसे चोरी करेगा, लोभ जगाएगा। अंदर देखिएगा मैंने क्षमता खो दी, व्याकुल हो गया। व्यभिचार करेगा, वासना जगाएगा, व्याकुल हो गया।
कोई भी वाणी का शरीर का दुष्कर्म तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पहले अपने मन में कोई विकार न जगा ले, कोई मैल न जगा ले। और जैसे ही मैल जगाया व्याकुल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा।
अब उपदेश की बात नहीं है,
कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है तो उपदेश देने के लिए नहीं बनता, वो साइंटिस्ट है, अनुभव करता है, लोगों को अनुभव करना सिखाता है। कहता है पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। तुम किसी की हत्या तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पहले अपनी हत्या न कर लो। पहले अपने सुख शांति की हत्या करते हो, फिर औरों की सुख शांति की हत्या करते हो। कोई दुष्कर्म ऐसा नहीं जो दूसरों को हानि पहुंचाए तब तक नहीं होगा जब तक कि पहले तुम अपने आप को दुखी न बना लो।
इतनी बड़ी सच्चाई
बिना अनुभव के हम स्वीकार भी कर लें
तो क्या फर्क पड़ा,
अनुभूति पर उतरे।
अरे जलने लगा, देख क्रोध जगाया तो सारा शरीर जलने लगा, धड़कन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, कितना
व्याकुल हो गया।
कोई विकार जगाए व्याकुल हो जाएगा,
व्याकुल होगा ही।
कोई अपने को व्याकुल करना नहीं चाहता,
एक व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो अपने आप को व्याकुल करना चाहे। सब सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं
और काम ऐसे करते हैं, प्रतिक्षण कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई विकार जगाए जा रहे हैं। इन पांचों इंद्रियों से अगर संपर्क होता हम विकार जगाते हैं, पांचों इंद्रियों से संपर्क नहीं होता तो मन अपनी कल्पना करता है, चिंतन करता है और विकार जगाता है।
दुनिया से हमारे संपर्क करने के यही तो रास्ते हैं और कोई दरवाजे नहीं, और हर दरवाजे पर विकार जगाते हैं, विकार जगाता है, व्याकुल होता है, दुखी होता है। अरे दुख के बाहर आ भाई, इन अनुभूतियों को देख, दुखद संवेदना जागी है, दुखद सेंसेशन जागी है तो देख थोड़ी देर, अनित्य है रे, नश्वर है रे, भंगुर है रे। फिलोसफी नहीं है ये, रियलिटी है जो अनुभूति पर उतारनी है। दुखद से दुखद अनुभूति, बड़ी ग्रॉस अनुभूति हुई, बहुत पीड़ा हो रही है, बड़ा भारीपन है, बड़ा तनाव है। देखते 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 देर सवेर समाप्त हो गया। बड़ी सुखद अनुभूति आई, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, बहुत अच्छा लगा। अनुभूति है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अब शीघ्र गति से उत्पन्न नष्ट होने लगा। स्वभाव वही है, अनित्य है, नश्वर है। अरे जो अनित्य है, जो नश्वर है, उसके प्रति क्या राग जगाऊं, वो देखते देखते खत्म होने वाला है। क्या द्वेष जगाऊं, देखते देखते खत्म होने वाला है। प्रज्ञा जागी, अनुभूति वाला ज्ञान जागा, समता जागी, दुखों के बाहर निकलने लगा, आदमी बदलने लगा। बहुत व्याकुल रहने वाला आदमी सुख शांति का जीवन जीने लगा। और जैसे ही सुख शांति का जीवन जीता है, मन समता में आता है, तो मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है। अब वो व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने शरीर से कोई ऐसा दुष्कर्म कर ही नहीं सकता जिससे और लोगों की सुख शांति भंग हो, स्वयं भी सुखी, लोगों को भी सुखी रखता है। ये बुद्ध की शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा, केवल बौद्धों के लिए नहीं। कोई अपने को बौद्ध कहे वही इसको स्वीकार करे, जो बौद्ध नहीं कहता वो न स्वीकार करे, लेन देन नहीं इस बात से। यही कारण है कि 2300-2400 वर्ष पहले जब भारत के बाहर गई तो विभिन्न देशों में जहाँ भी गई उन्होंने देखा, अरे तो प्योर साइंस है रे, अब तक उपदेश देने वाले तो बहुत आए, चोरी मत करो, हत्या मत करो, कैसे मत करो, क्यों मत करो, ये तो अब समझा तो लोग स्वीकार करने लगे। हर संप्रदाय के लोग स्वीकार करने लगे, हर जाति के, हर वर्ण के, हर गोत्र के लोग स्वीकार करने लगे। और आज अब 2600 वर्ष के बाद ये उस ब्रह्मदेश से वापस आई है और दुनिया में फैल रही है। भारत के समझदार लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो नहीं समझते हैं वो निंदा करें, बेचारे नहीं जानते, उन्हें पता नहीं कि बुद्ध ने क्या सिखाया। तो विपश्यना नहीं की बातें करते हैं, करें, उन पर करुणा आती है, उन पर मैत्री जागती है, सद्भावना जागती है, लेकिन दुनिया सारी स्वीकार करती है। आज दुनिया की कोई भी ऐसी परंपरा नहीं, कोई ऐसी परंपरा नहीं को जिसको धर्म कहते हैं, कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके अनुयायी विपश्यना के शिविर में ना आते हों। सब परंपराओं के लोग विपश्यना में आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई हो, सब आते हैं। उनके गुरु आते हैं, उनके लीडर्स आते हैं और आकर कहते हैं तो हमारा धर्म है, हमारे यहाँ भी यही बात है, हमारे यहाँ भी यही बात है। ये बात तो है पर करना नहीं आता ना, बुद्ध ने करना सिखाया, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। मन को समता में रखो, समता में रखो, सब कहते हैं, कैसे रखो, ये तो सिखाया नहीं, जड़ों तक गए ही नहीं, ऊपर ऊपर से मन को समता में रखते हैं और भीतर तो बड़ा कोलाहल है, व्याकुलता है, वहां तक पहुंचे ही नहीं। जब तक बॉडी सेंसेशन पर नहीं पहुंचे तब तक माइंड के रूट पर नहीं पहुंचे, और माइंड के रूट को नहीं सुधारा तो ऊपर ऊपर से हजार सुधारते रहो कुछ नहीं होगा। बुद्ध कहता है कि एक पेड़ खड़ा हो गया, विष का विषैला पेड़ खड़ा हो गया, पॉइजन ही पॉइजन, पत्ते पत्ते में पॉइजन, फूल फूल में पॉइजन, रेशे रेशे में पॉइजन, बड़ा खतरनाक है, तुमने उसको काट के फेंक दिया, अच्छा किया, जड़ें नहीं काटी ना, फिर निकलेगा दूसरा, निकलेगा तीसरा, निकलेगा, निकलते ही जाएंगे। अरे जड़ें निकालो तो अपने विकारों की जड़ें निकालो, और विकारों की जड़ें निकालने के लिए जड़ों तक पहुंचना होगा, और मन का विकार और विकार की जड़ हमारी बॉडी सेंसेशन से कनेक्टेड है। माइंड और मैटर का इतना स्ट्रांग रिलेशन है, मृत्यु के समय ही अलग होगा, अन्यथा प्रतिक्षण दोनों साथ हैं, सोते जागते उठते बैठते, और इनमें सेंसेशंस हो रही है, हम रिएक्ट किए जा रहे हैं, सेंसेशन हो रही है, हम रिएक्ट किए जा रहे हैं, ये आदत कैसे छूटे, उपदेशों से नहीं छूटेगी। तो विपश्यना की विद्या दी आज सारी दुनिया स्वीकार कर रही है, जहाँ जाएँ भीड़ लगती है लोगों की इस विपश्यना के लिए, कोई नहीं समझता है और निंदा करता है तो क्या करें बेचारे को, लेकिन जो समझते हैं वो खूब स्वीकार करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड है, बड़े से बड़ा शराबी आदमी कैसे शराब से छूट जाता है, बड़े से बड़ा ड्रगिस्ट कैसे ड्रग के बाहर निकल जाता है, अरे यही नशे नहीं होते हैं, क्रोध का भी अपना नशा है, वासना का भी अपना नशा है, अहंकार का अपना नशा है, कैसे उस नशे के बाहर निकलते हैं। इस साइंटिस्ट ने खोज निकाली, और साइंटिस्ट की बात कहते हैं, लोगों को समझाते हैं, कोई कहता है कि मैं अल्कोहल का मुझे व्यसन लग गया, मैं कैसे बाहर निकलूं, तुझे अल्कोहल का व्यसन नहीं है, अल्कोहल लेने से तेरे बॉडी में एक सेंसेशन होता है, वो सेंसेशन तेरे डीपेस्ट लेवल ऑफ माइंड को बहुत अच्छे लगती है, और वो क्रेविंग करना शुरू करता है, ऐसी सेंसेशन चाहिए, ऐसी सेंसेशन और चाहिए, तो और शराब पीता है, तो और शराब पीता है। अरे इस बॉडी सेंसेशन को देखना सीख जाए और रिएक्ट नहीं करे तो सारा व्यसन दूर हो गया, एक का नहीं, दो का नहीं, सैकड़ों आदमियों का कैसे व्यसन दूर हो गया, और इन विकारों का व्यसन कैसे दूर हो गया, ये बुद्ध की शिक्षा, ये महान शिक्षा, इसे समझे और इसका उपयोग करे, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए। और जहाँ सचमुच अपना भला होने लगा, अपना मंगल होने लगा, अपना कल्याण होने लगा, देखेंगे उसके साथ साथ औरों का ही भला होने लगा, औरों का ही मंगल होने लगा, औरों का कल्याण होने लगा। आज इस पावन दिवस पर जो जो इस धर्म सभा में आए, सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्ति हो, मुक्ति हो। धर्म और संप्रदाय में क्या फर्क है? अच्छा प्रश्न है। संप्रदाय सीमित लोगों का होता है और धर्म सबका होता है। अपमानो धम्मो अपरिमित है, वो कुदरत के कानून, विश्व के विधान, निसर्ग के नियम जो सब पर लागू होते हैं उनको धर्म कहते हैं, और संप्रदाय थोड़े से लोगों की एक संगठन है, उसे समाज कहें, संगठन कहें। संप्रदाय शब्द जरा बुरा हो गया लोगों की नज़रों में, आरंभ तो बड़े अच्छी तरह से हुआ, जो समता प्रदान करे सो संप्रदाय, लेकिन अब तो समता कहाँ भी क्षमता प्रदान करता है। तो संप्रदाय नहीं, धर्म का फैलाव हो जो सबके लिए कल्याणकारी है। बच्चों को विपश्यना कब शुरू करनी चाहिए? जन्म के पहले करनी चाहिए, जब माँ के पेट में गर्भ होता है, और वो गर्भवती माँ शिविर में आती है तो केवल अपने लिए काम नहीं करती, उस बच्चे के लिए भी करती है। वो धर्म की तरंगे तरंगित होने लगता है तो धम्मा बेबी, वेस्ट में तो इतनी प्रसिद्धि हो गई, हर शिविर में कोई ना कोई प्रेग्नेंट होगी, दो होंगे, चार होंगे, दस होंगे। आई वॉन्ट ए धम्मा बेबी, आई वॉन्ट ए धम्मा बेबी, और सच में धम्मा बेबी प्राप्त होता है। तो बीज उस वक्त से पढ़ें, और नहीं तो जब इस लायक हो जाए, 5-7 वर्ष के बच्चों को केवल आनापान सिखाते हैं, और फिर 17-18 वर्ष का हो जाए तो पूरी विपश्यना सिखाते हैं। इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट अवर पास्ट एंड फ्यूचर, हाउ कैन वी शेप अवर फ्यूचर? वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज़ नॉट दैट यू फॉरगेट ऑल योर पास्ट, इट इज़ नॉट दैट यू डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, बट फर्स्ट हैव योर सेल्फ एस्टैब्लिश इन द प्रेजेंट, देन यू रिमेंबर इन सिमिलर सिचुएशन व्हाट यू डिड इन द पास्ट एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, परफेक्टली ऑल राइट, बट यू फॉरगेट द प्रेजेंट एंड कीप ऑन रोलिंग आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, यू कैन नॉट मेक गुड डिसीजन और राइट डिसीजंस। यू से दैट वी शुड नॉट किल, देन हाउ डू वी मैनेज विद हार्मफुल पेस्ट्स एंड रोडेंट्स लाइक रैट्स, कॉकरोचेज एक्सेट्रा? यस, वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम, बट एट प्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली किलिंग इज द ओनली सोल्यूशन। वाई किलिंग? इफ द डिमांड कम्स फ्रॉम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन धम्मा, इफ डिमांड कम्स, वी वॉन्ट रेपेलेंट, लेट दम बी अवे, द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स, लेट दम लिव एट ए प्लेसेज वेयर देर इज नो ह्यूमन सोसाइटी। वाई किल? देर इज नो एंड, इफ यू कीप ऑन किलिंग मोर एंड मोर विल अराइज, सो कीप दम अवे, एंड वेन यू स्टार्ट डिमांड लाइक दिस, देन ऑल दिस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मर्चेंट्स एंड बिजनेस पीपल, दे विल इन्वेंट सर्टन थिंग्स विच विल कीप दम अवे। इफ ए पर्सन इज सो प्योर एंड यूजफुल, हाउ कम इट वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया? लेट पीपल फ्रॉम इंडिया आंसर इट। इट वेंट अवे बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस प्यूरिटी गॉट लॉस्ट वेन इट वेंट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सेक्स, दे स्टार्टेड एडिंग देयर ओन फिलोसफी, देयर ओन बिलीव्स, देयर ओन डॉगमास, देयर ओन कल्ट्स, एंड द प्यूरिटी गॉट लॉस्ट। वेन द प्यूरिटी इज लॉस्ट, देन द एफिकेसी इज लॉस्ट, इट स्टॉप गिविंग रिजल्ट, एंड वेन देयर इज नो रिजल्ट, व्हाई पीपल विल वेस्ट देयर टाइम? इन अदर कंट्रीज ऑल्सो इट वेंट एंड इट लॉस्ट, ओनली वन कंट्री मेंटेन्ड इट इन इट्स प्रिस्टीन प्यूरिटी, एंड दैट टू वेरी फ्यू पीपल, mass of the people were just involved in rites and rituals and ceremonies, but a line of teachers, they maintained it in pristine purity. That is why we got it in pristine purity. Do you think 10 days are enough for all the purification, and why 10 days only? Because more than that you won't spare. My teacher also, when he asked me to come for 10 days, I started bargaining. It is too much for me, I am such a busy person. How can I spare 10 days? Please teach me in one day and the rest I will do at my home. Nothing doing. It is a minimum to make a deep operation of the mind, to reach the depth of the mind. But that is not enough. Courses are given for 20 days, for 30 days, for 45 days, for 60 days, and now next course is coming for 90 days. And then only you can reach the stage where you can make such a deep operation of the mind and understand the whole activity of the mind, how it works. Otherwise, activities you understand, but it's more superficial, you won't go to that depth. How does smoking or any other addiction come in the way of vipassana? Any addiction, that means you do not know what is happening within you. When the addiction is there, that means the addiction is for the sensation that you experience, and you have become a slave of that sensation. Every time you crave for that sensation, you crave for that sensation. Without that, you are such a miserable person. If you come out of it, you are a happy person. You are free from all the misery. बच्चों के शिविर में 17 वर्ष के बालकों को नहीं लेते, उसे विपश्यना शिविर में नहीं लेने का क्या कारण है? पकना चाहिए जो काम कर सके, इसलिए 18 वर्ष की लिमिट रखी, लेकिन कोई कोई केस में ले भी लेते हैं, जब देखते हैं कि ये युवक या युवती युवती इस योग्य है कि कर पाएगा तो लेते हैं। Do you think the matter is having mind? Both mind and matter keep on influencing each other. Mind keeps on influencing the matter. Matter keeps on influencing the mind. And we do not know what is happening within ourselves, and we keep on reacting. And that is the cause of our misery. Can you not condense your program at Igatpuri फॉर 7 days ओनली. बार्गेनिंग वोंट हेल्प. एज आई सेड आई स्टार्टेड बार्गेनिंग विद माई टीचर एंड ही जस्ट लाफ्ड. 10 days itself इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू गो टू सच डेप्थ ऑफ द माइंड. डोंट बार्गेन. स्पेयर 10 days एंड यू वोंट रिग्रेट. नॉट ए सिंगल पर्सन. नाउ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव टेकन कोर्सेज ऑफ विपश्यना. आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन हु सेज आई हैव वेस्टेड माय 10 days. एवरीवन हु गोज गेट्स बेनिफिट लेस और मोर अकॉर्डिंग टू वन्स ओन एफर्ट्स. इज मेडिटेशन नॉट मेंट ओनली फॉर रिटायर्ड एंड ओल्ड पीपल? ओ नो 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 नो. एट वेरी यंग एज यू मस्ट लर्न इट. इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग. हाउ टू लिव. How to live peacefully and harmoniously within, and how to generate nothing but peace and harmony for the atmosphere outside, so that others can also live in peace. So the whole life, it is necessary. At the end of the life, you want to learn it. For how long you will practice it? One difficulty will be at that time, it will be so difficult for you to control your mind, because mind will become a slave of your habit pattern. Will Vipassana make me lose my competition spirit? No. But the madness will go. You have a certain aim and you have to achieve it. You work hard to achieve it, nothing wrong. But if you start craving for it and you don't work properly, only craving, you won't reach your goal. So learn without craving how you can work hard. Does Vipassana change the way one looks at the physical world? Certainly, it makes a big change because the mind gets changed. Now the mind is only reacting. Every time you come across any object of any sense door, you start reacting. And every time you react, you lose the balance of your mind. So you will start living a balanced mind, a peaceful mind, harmonious mind. Vipassana come for all addiction, but then concentration on the breath is not matter of addiction. Oh no, no. Breath is to observe the reality of the moment. If you start making a breathing exercise, then it is totally against Vipassana. No breathing exercise. The breath as it is. The entire path is as it is. He called yatha bhuta, not yatha krit, not yatha vanchit, yatha bhuta. If it is long, it is long. If it is short, it is short. If left nostril, right nostril, then you are observing the truth of the breath within the framework of the body. Can you reach the state of seedless samadhi with Vipassana? Certainly. But what you call seedless samadhi, one must understand where it becomes seedless. Every time you react, there is a seed. The reaction of your mind is the seed of your karma. And when you don't react and there is no more karma, then this is seedless samadhi. And Vipassana takes you to that stage with your own experience. Islam mein jo qayamat ka concept hai, kya vah utpadvyay ke concept se milta hai kya? Concept hota hai. Kisi bhi concept ko na achha kahein na bura kahein. Hum yatharth ko is samay kya ho raha hai? Qayamat isi samay har bhitar hai. Dekho nasht hue ja raha hai. नष्ट हुए जा रहा है और हम व्याकुल नहीं हैं. तो दुनिया में जब भी कुछ नष्ट होगा हम व्याकुल नहीं होंगे. तो व्याकुलता से बाहर निकलने के लिए कयामत को अपने भीतर देखें, नियामत को अपने भीतर देखें, दोनों को अपने भीतर देखें. बार बार शिविर में आकर कैखे गए पढ़ने का क्या लाभ? आरंभ तो कैखे गए से ही होगा, पर डॉक्टरेट करने के लिए बार बार आना होता है, लंबे शिविर लेने पड़ते हैं. तो बार बार जो आते हैं पहले पुष्ट होने के लिए. इतनी बात तो ठीक, अच्छी तरह अनुभूति पर उतार ली, समझ गए, अब इसके आगे कदम उठाने हैं तो आगे कदम सिखाते हैं. ड्यूरिंग Vipassana, लॉन्ग अवर सिटिंग इज रिक्वायर्ड. इज इट एनी वे हार्मफुल टू एज्ड और फिजिकली वीक पीपल? नो. नाइदर पीपल आर आस्क्ड टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम. यू कैन चेंज योर पोस्चर only after Vipassana 3 times 1 hour, and that also if you feel like changing you can change it, nothing wrong. And if there is some physical ailment, we don't press people to sit on the floor. They can sit on the chair and meditate easily, comfortably. There is no exercise of body, this is exercise of mind only. Main shivir ke dauran yoga ka abhyas kyon nahi kar sakta?
क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। 10 दिन का समय इतना कम है, आज के 70-80 वर्ष पहले पड़ोसी देश ने जो इस विद्या को संभाल के रखा, तो किसी व्यक्ति को विपश्यना नहीं सिखाते थे जब तक कि वो महीने भर के लिए ना आए। महीने भर से नीचा कोई कम कोई कोर्स नहीं होता था, लेकिन आज की भाग दौड़ की दुनिया में शुरू में कहीं 1 महीने के लिए आओ तो बहुत थोड़े लोग आ पाएंगे, इसलिए 10 दिन किया। कम करते 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 10 दिन पर आए, उससे कम करें तो कुछ लाभ नहीं होता। और इतने कम समय में फिर बीच में योगासन भी करने लगे और कुछ करने लगे तो पूरा काम नहीं होता, इसलिए रोकते हैं 10 दिनों के लिए। घर जाकर के योगासन जरूर करना चाहिए। कृष्णमूर्ति जी चित्त की जागृति और चित्त निरोध के बारे में कहते थे, विपश्यना और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैं उनसे मिला हूँ और सारी बातें उनसे हुई है, वो खूब समझते हैं। लेकिन क्योंकि ध्यान के नाम पर, साधना के नाम पर न जाने कितनी टेक्निक चल पड़ी, और टेक्निक उसको कहती हैं जहाँ एक आदमी एक आलंबन से बंध जाए, तो इसमें तो किसी एक आलंबन से बंधता नहीं क्योंकि बदलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा दिस इज नो टेक्निक। और दूसरी बात जिसका उन्होंने विरोध किया, गुरुडम का, जहाँ गुरु कहता है कि मैं तुम्हें तार दूंगा, अरे तुमसे क्या होने वाला है, मैं कर दूंगा, मेरी शरण आ जाओ, तो वहाँ धोखा है, एक्सप्लोइटेशन है। तो यहाँ कुछ नहीं ऐसा, कोई किसी को तारने वाला नहीं, स्वयं अपने आप को तारना है। कोई विद्या सिखा देगा, कोई रास्ता दिखा देगा, चलना तो खुद पड़ेगा, तो कोई गुरुडम नहीं। मूर्ति पूजा में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं अगर समझ के की जाए। जिस किसी देवी की, देवता की, बुद्ध की, महापुरुष की, किसी की भी मूर्ति है, उसको देखते ही उसके गुण याद आए, इस व्यक्ति के क्या गुण, और वो गुण हमारे अंदर आए, ये प्रेरणा जागे, तो मूर्ति बहुत काम की हुई। और केवल सिर झुका करके ये मान लिया आप तो इनकी कृपा हो जाएगी और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, तो मूर्ति के नाम पर धोखा हो गया, उससे बचना चाहिए। विल विपश्यना क्योर एनी फिजिकल डिजीजेस? नो, डोंट कम टू विपश्यना टू क्योर एनी फिजिकल डिजीज। इट इज़ टू प्यूरिफाई योर माइंड, टू टेक अवे ऑल द डिजीजेज ऑफ द माइंड। But there are many physical diseases which are psychosomatic, based on the mind, they will automatically go away. But don't come for that. When I went for my migraine headache, my teacher didn't give me admission. He said, forget that. This is a high valued spiritual path of your country and you are devaluing it, you are coming for the migraine headache. No, I won't take you. If you come for the purification of the mind, to achieve the high goal of the spirituality, then come. Yes, I will teach you. So come to Vipassana, keeping in mind the high spiritual goal. During the course, how much time per day we will have to devote? The management here will give you the program and you will understand from that. To live is to feel, to sense and respond. How do better not to respond? You respond, but in a positive way. If you react, a blind reaction is always a bad response. Response is there, but with a balanced mind, with an equanimous mind, it is only positive. There is no negativity involved in it. Panchsheel ka palan nahi hota ho, to bhi sadhana karni chahiye. Isiliye jab koi aata hai 10 din ke liye, to wahan kam se kam 10 din ke liye to panchsheel ka palan karna avashyak hai. Kyun avashyak hai? Ki koi sa bhi sheel todenge तो ऐसे होगा जैसे भीतर बहुत तूफान उठने लगे, तो एक और तूफान उठ रहे हैं, एक और हम मन की गहराइयों में जाएं, ये होने वाली बात नहीं है। जैसे बहुत मानसून आया हो और समुद्र के भीतर हमको तेल की खोज करनी है, मानसून के समय नहीं कर सकते, बंद करना पड़ता है, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची लहरें, मानसून चला गया, लहरें फिर भी हैं लेकिन उतनी ऊंची नहीं है, तो हम गहराई में जा करके तेल की खोज कर सकते हैं। ऐसे ही अपने भीतर सच्चाई की खोज करनी हो तो ये ऊंची ऊंची लहरों को रोको, कम से कम 10 दिन तो रोको, उसके बाद अपने आप मन वश में आने लगेगा तो सहज भाव से रोकना आ जाएगा। वहाँ तो परिस्थिति ऐसी है, दिन भर का प्रोग्राम ऐसा है कि कौन सा शील तोड़ोगे, कोई शील तोड़ने की वहाँ पर कोई कारण नहीं, तो आसानी से पंचशील का पालन होगा 10 दिन के लिए। इज विपश्यना ए स्लो पाथ टुवर्ड सल्वेशन एज अपोज टू अदर? दिस इज द क्विकेस्ट पाथ, अदरवाइज यू गो इन ए ब्लाइंड अले एंड गेट स्टक देयर, नो पाथ। The path is only which takes you to the final goal of full liberation. Last question. Achhi baat. क्या पाकिस्तान में कोई विपश्यना सेंटर है?
सेंटर तो नहीं है, लेकिन कोर्स लगते हैं। पाकिस्तान वालों को भारत सरकार वीसा नहीं देती तो बेचारे आते हैं भागे हुए, नेपाल के सेंटर में आते हैं, बर्मा के सेंटर में आते हैं, सबको अच्छा लगता है, किसी संप्रदाय का हो। और अब तो पाकिस्तान में शिविर लगने लगे, अच्छा लगता है लोगों को, अपने से बात लगती है, तो कौन विरोध करेगा? हम मॉरेलिटी का जीवन जिए, मन को वश में करें, मन को निर्मल करें और उसका परिणाम अच्छा हो, अभी हो, तो कौन विरोध करेगा? सब स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे फैलेगी, सारे देशों में फैलेगी। पाकिस्तान में बहुत दुखियारे हैं, जैसे हिंदुस्तान में बहुत दुखियारे हैं। दोनों ही देशों के दुखियारे लोग धर्म को स्वीकार करके इस रास्ते चलकर अपने दुखों के बाहर आएं। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ हो, मुक्ति हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल।